الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سلسلہ اشرفیہ کی عظیم علمی روحانی شخصیت اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی 14ویں سالانہ فاتحہ ہم منا رہے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ اور رب کی طرف بلائیے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ. بزرگان دین اولیاء کاملین کی تعلیمات یہی ہیں کہ انہوں نے بندگان خدا کو بہترین طریقے سے تبلیغ فرمائی اور انہیں سیدھی راہ دکھائی. انہی میں سے ایک حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ. آپ کی ذات والا صفات میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے اور وہ ہے امن. امن ایسی چیز ہے کہ اگر علم کے ساتھ امن بھی ہو تو پھر سونے پہ سہاگا کا کام کرتی. اور جو شخص با امن ہوتا ہے اس کی زبان میں اثر ہوتا ہے. جو کچھ وہ کہتا ہے لوگوں کے دلوں پر اثر وہ بات کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی جب سیرت پڑھتے ہیں ان کے حالات ان کے واقعات ان کی کرامات ان کے کمالات تو ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ امن. حضرت اشرف المشائخ نور اللہ مرقدہ کی ذات میں یہ چیز بدرجۂ اتم موجود تھی. ہم نے یہ دیکھا کہ ہر وقت اپنے معمولات پر استقامت کے ساتھ قائم. پہلے میں اجمالی طور پر آپ کے معمولات بیان کر دوں. گزشتہ سالوں میں بھی ہم نے بتایا تھا حضرت اشرف المشائخ رحمت اللہ علیہ روزانہ رات میں 100 نفل پابندی سے ادا کرتے تھے. فجر کے بعد 100 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھا کرتے تھے. اثر کے بعد 22 مرتبہ دعائے حفظ البحر پڑھا کرتے تھے. عشاء کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. اور رات میں جب 100 نفل مکمل ہوتے تھے تو پھر ذکر اذکار کرتے تھے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی. پہلے انہوں نے خود عمل کیا اور اس کے بعد نہ جانے کتنوں کو سیدھے راستے پر لگا دیا اور کتنوں سے کتنے وظائف پڑھوا دیے کتنے چلے کروا دیے. آج تو دیکھتے ہیں پرانے عزام آرام سے سوتے ہیں. ان کی کیفیت یہ تھی وہ خود بھی جاگتے تھے اور مریدوں کو بھی جاگنے کی تلقین کرتے تھے. اچھا ایسا تو مشکل ہے کہ ہر آدمی پوری رات جاگے. اس کو کام بھی کرنا ہے اس کو روزگار بھی تلاش کرنا ہے اس کو ذریعہ معاش بھی کرنا ہے. تو اسی لیے ایک رات نوچندی جمعرات آپ نے منتخب فرمائی اور وہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. कि हर नौचंदी जुमेरात को दरगाह आली अशरफिया में शब्बेदारी का प्रोग्राम होता। दूर दूर से मुरीदीन आते हैं, जिसमें आयत करीमा सवा लाख, अल्लाह समद सवा लाख, दुरूद शरीफ सवा लाख, ये तमाम चीजें जो हैं कि पढ़ी जाती हैं। फिर जिक्र अजकार होता है, दुआ होती है, और उसके बाद लंगर शरीफ होता है, और फिर सब अपने घरों को तशरीफ ले जाते। कहने का मकसद ये है कि हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह ने जो मामूलात दरगाह शरीफ के मुकर्रर फरमाए, वो इसीलिए ताकि इन मुर्दा दिलों को जिला बख्शी जाए, इन लोगों के कुलूब व अजहान को रूहानियत से मुनव्वर कर दिया जाए। कितने मुरीदीन ऐसे थे कि जो कभी नमाज भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन आपकी सोहबत में आने की वजह से एक वक्त में 12,000 मरतबा अल्लाह समद पढ़ते थे। हजरत के एक मुरीद जिनका नाम था राशिद फारूकी अशरफी, मरहूम, इस दुनिया से जा चुके, उनका इंतकाल हो गया। हजरत ने उनको बताया कि अल्लाह समद 12,000 मरतबा पढ़ना शुरू कर। यहां से जद्दा गए, वहां पर पानी को मीठा करने वाले प्लांट में उनकी जॉब लगी, और रात में रोजाना 12,000 मरतबा अल्लाह समद पढ़ते। आज अगर कोई पढ़ने के लिए बैठे, किसी को 1100 दफा बताओ तो वो परेशान हो जाता। असल बात क्या है, हम समझते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, ये गलत बात है। हम कैसे पढ़ सकते हैं, ये तो पढ़वाने वाला पढ़वा रहा। सोचना ये चाहिए कि हम अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, हमारी हिम्मत नहीं है, ये हमारे शेख की निगाह करम है। एक आदमी 12,000 मरतबा अल्लाह समद, और इसी वजह से उनके अंदर ये ताकत पैदा हुई कि जिस मकान में जद्दा में वो रहते थे वहां पर एक जिन का असर था। तो हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह हज पर तशरीफ ले जाने लगे, तो उन्होंने हजरत के लिए वो मकान किराए पे लिया। जब दाखिल हुए तो देखा कि एक साहब खड़े हैं, बड़े लंबे चौड़े, बहुत लंबा कद है, लेकिन इनको बिल्कुल डर महसूस नहीं हुआ। क्यों? रूहानियत थी, पीर की निगाहें करम थी। 12,000 मरतबा जो शख्स अल्लाह समद रोजाना पढ़ता हो, उसके कल्ब की कैफियत क्या हो। इसी वजह से डरे नहीं, हालांकि बिल्कुल तन्हा थे। इन्होंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, इन्होंने जाकर मुसल्ला बिछाया और पढ़ने के लिए बैठ। तो वो जो जिन जो असर था उस घर में, उसने कहा ये गैलरी का दरवाजा जो है खोल देना, ये मेरी गुजरगाह है, यहां से मैं आता हूं जाता हूं, और अगर तुमने नहीं खोला इसी गैलरी से उठाकर तुझे बाहर फेंक दूंगा। अब आप गौर करें, तन्हा आदमी हो किसी मकान में और जिन उससे बात करे, उसकी क्या कैफियत होगी? पहले ही देखते ही भाग जाए। लेकिन ये बात भी कर रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं, और हिम्मत कितनी कि उठकर दरवाजा खोल दिया गैलरी का और दोबारा पढ़ने के लिए बैठ, इतनी हिम्मत। लेकिन इन्होंने एक काम किया कि हजरत को फोन किया और फोन पर बताया कि आप हज के लिए तशरीफ ला रहे हैं, मैंने जो मकान आपके ठहरने के लिए रखा है, किराए पे लिया है, वहां पर बहुत बड़ा असर है जिन का, और ये पूरा वाकया बताया कि इस तरह। हजरत ने फरमाया फिक्र न करो, हम आएंगे तो हम देख लेंगे कौन। आप तशरीफ ले गए उस मकान में, जब आपने पहली मर्तबा कदम रखा तो आपने फरमाया कौन सा दरवाजा खोलने के लिए कहा था? क्या हुजूर ये गैलरी का दरवाजा, उसने कहा था खोल दो, मैं यहां से आता हूं जाता हूं, और अगर नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हें उठा के यही गैलरी से बाहर फेंक दूं। हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अभी दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद कर दिया और उसके आगे मुसल्ला बिछाकर बैठ गए, कोई मुझे फेंक सकता है तो आके उठा के फेंक। फिर फरमाया सुन, जो भी यहां पर है वो कान खोल कर सुन ले कि हम गौसे आजम की औलाद हैं, मखदूम समनानी की गुलामी में हैं, अगर किसी ने हमें तंग किया तो हम उसको मखदूम साहब की अदालत में पेश कर दें। हम मेहमान हैं, हज करने के लिए आए, तुम हमें तंग कर रहे हो। उसके बाद हजरत उसी जगह बैठकर उसी दरवाजे को बंद करके वहां अपना मुसल्ला बिछाकर दुआए हिज्बुल बहर पढ़ा करते, और जितनी देर आप पढ़ते थे उतनी देर वो साहब आकर पीछे बैठ जाते। कौन साहब? जिन साहब। और जब हम दुआ करके पीछे देखते थे वो फौरन गायब हो जाता। तो हजरत की शान तो ये थी कि आपने अपने मुरीदीन को भी इस काबिल बना दिया था कि वो जिनों से मुकाबला करते थे। यही राशिद फारूकी साहब फरमाते हैं, हमने खुद ये वाकयात उनकी जबानी सुने, वैसे कोई किसी और से सुने सुनाए वाकयात नहीं। कहते एक दिन मैं पढ़ रहा था कि देखा कि खिड़की में वो आकर बैठ गए और उसने सांस बाहर की तरफ निकालना शुरू किया और उसकी नाक से और मुंह से धुआं निकलना शुरू हो, और इतना धुआं निकला कि पूरा कमरा जो था वो धुएं से भर गया और उसमें बदबू भी थी। कहते मेरा दम घुटने लगा और ऐसा लगा कि बस चंद मिनटों में मेरा सांस बंद हो जाएगा और मेरी मौत वाकई हो। मैंने वहीं से पीरो मुर्शिद हजरत सैयद अहमद अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पुकारा। फरमाते हैं कि उस वक्त हजरत लंदन में थे, हजरत उसी वक्त वहां पर पहुंचे, मेरे और जिनके दरमियान हाइल हो गए, उसको भगा दिया, सारा धुआं भी खत्म हो गया, मेरा सांस भी दुरुस्त हो गया। और उसके बाद उस सफर में जो हजरत यहां से लंदन तशरीफ ले गए थे और वहां से फिर हज करने गए थे, हजरत महबूबुल मशाई साहब दादा सैयद महबूब अशरफ जिलानी दामद बरकातुम लालिया भी उस पर हजरत के साथ लंदन में थे। तो जब हमने हजरत से पूछा तो आपने फरमाया कि उस वक्त मैं लंदन में था, जब इसने जद्दा से मुझे पुकारा तो मैं फौरन रूहानी तौर पर वहां गया और इसके और जिनके दरमियान हाइल होकर जिनको भगा दिया और इसको बचा लिया। इस तरह अपने मुरीदीन को बचाया, उनकी दस्तगीरी की, उनकी मदद फरमाई। लेकिन अपनी जिंदगी में कभी भी इस वाक्य को बयान करने की इजाजत नहीं दी। ये गौर की, अल्लाह का वली बेनफ्स होता। यही राशिद फारूकी साहब, इनका मामूल था जब हजरत हज पे जाते थे तो ये वहां खिदमत करते थे। आप जानते हैं कि नौकरी के लिए, जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता एक साल का या दो साल का, दो साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, या तो दोबारा हो जाए या फिर वापिस पाकिस्तान आना पड़े। तो राशिद फारूकी साहब मरहूम जो थे, पानी को मीठा करने वाले प्लांट में ये इंजीनियर थे और हजरत की दुआ से ही वहां पर गए, बहुत पुराने आपके मुरीद थे। इनका मामूल क्या था, जब हजरत तशरीफ ले जाते ये मिना में, अराफात में, मुजदलफे में, मक्के में, मदीने में बिल्कुल हजरत के साथ रहते, उनकी खिदमत करते, वजू कराते, बिस्तर उठाते, मुसल्ला बिछाते, जो जो भी खिदमत थी ये किया करते। मिना में अर्ज करते, हुजूर कॉन्टेक्ट खत्म होने वाला है। हजरत फरमाते हाथ उठाओ, इन्होंने हाथ उठाए, हजरत ने हाथ उठाए, फरमाया इलाहुल आलमीन इसका कॉन्टेक्ट बढ़ा दे। हाथ फिर हजरत वापिस आ जाते थे और जब कॉन्टेक्ट खत्म होता था वो अफसर खुद बुलाकर मजीद दो साल का कॉन्टेक्ट कर दिया गया। इनको यकीन था मेरे पीर ने हाथ उठा दिया। होता रहा होता रहा, आठ दस साल गुजर गए। कहते एक मर्तबा मैंने इसी तरह मीना में हजरत से कहा तो हजरत ने फरमाया तुम क्या बार बार दुआ कराते हो, कॉन्टैक्ट बढ़ जाए, कॉन्टैक्ट बढ़ जाए। आज हम ऐसी दुआ करते हैं कि तुम नौकरी को छोड़ोगे, नौकरी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अल्लाह का वली जब मौज में हो और उसकी जबान से जो निकल जाए खालिक कायनात उसे पूरा कर देते। कहा हर दो साल के बाद, मैं हर साल हज पे आता हूं, हर दो साल के बाद तुम दुआ कराते हो, कॉन्टैक्ट खत्म हो रहा है फिर मैं दुआ करता हूं फिर हो जाता है। हजरत मौज में थे, तुमने बड़ी खिदमत की है, आज मैं ऐसी दुआ कर रहा हूं यहां मीना में कि तुम नौकरी को छोड़ोगे, नौकरी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, जाओ। मैंने दुआ कर दी। कहते बड़ा खुश हुआ, अब तो कॉन्टैक्ट की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन मामला क्या हुआ, हजरत हज करके जब वापिस तशरीफ लाए तो जो इनका अफसर था उसने बुलाया, राशिद साहब जी आपका कॉन्टैक्ट खत्म, मजीद कॉन्टैक्ट नहीं होगा। अरे ये कैसे बात, हर दो साल के बाद होता था और इस दफा तो हजरत ने फरमाया तुम नौकरी को छोड़ोगे, नौकरी तुम्हें नहीं छोड़े। कहा नहीं आपका कॉन्टैक्ट खत्म। अब दिल ही दिल में ये सोच रहे हैं, हजरत के अल्फाज इनके कानों में गूंज रहे, इन्होंने कहा कोई सूरत, कहा कोई सूरत नहीं, कल या परसों तुम्हारा हिसाब हो जाएगा, वापिस पाकिस्तान। बड़े मायूस हुए, घर आए, आकर फौरन हजरत को फोन मिलाया, हुजूर आपने तो ये फरमाया था, मामला तो ये हो गया। हजरत ने फरमाया जो हमने कह दिया है वही होगा। हुजूर ये तो इसके बरक्स हो रहा है, फरमाया जो हमने कह दिया वही होगा, इत्मीनान रखो। और एक चीज बताई, पढ़ने के लिए कहा ये पढ़ते रहो जाओ। ठीक, एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, ऑफिस गए, अफसर ने बुलाया, सब हिसाब किताब करके फाइल बंद, जाइए आपकी छुट्टी। अब परेशान, हजरत ये फरमा रहे हैं, सामने ये हो रहा, चलो अल्लाह की मर्जी, हो सकता है मुझे तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं। आकर सीट बुक करा ली 4 दिन के बाद की, यानी जिस दिन इनका हिसाब क्लियर हुआ, तनख्वाह मिल गई, सब अलाउंस वगैरह सब मिल गए, 4 दिन के बाद की इन्होंने फ्लाइट बुक करा ली। फिर हजरत को फोन किया, हुजूर यहां तो मामला खत्म, हिसाब किताब हो चुका। फरमाया जो हमने कहा है वही होगा। अब आप देखें, जाहिर में कुछ हो रहा है, हजरत कुछ पर, यही इम्तिहान है मुरीद का, पीर की जबान से जो निकल जाए समझ लो वही होगा। जाहिर में कुछ भी हो लेकिन अल्लाह का वली जब कह देता है, खालिक कायनात अपने कर्म से उसे पूरा फरमा देते। कहते हैं कि मैंने कहा ठीक है, हजरत तो फरमा रहे जाहिर है, अब मैं बहस तो नहीं कर सकता, यहाँ तो हिसाब किताब हो चुका, 4 दिन के बाद सीट बुक है। और मसला ये था कि उनकी 3-4 बच्चियां थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, मकान भी बनाना था। कहते अगर कुछ साल में रह जाऊं तो मैं बच्चियों की शादी कर दूंगा, एक मकान हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन अब तो छुट्टी हो रही है, पाकिस्तान में तो मसला ही अजीब। खैर बाहर सूरत, किस्सा मुख्तसर ये कि जाने से 1 दिन पहले अब इनकी आंखों से आंसू निकल आए और मुसल्ले पे पढ़कर उल्टे यानी सजदे में की हालत में रो रहे, या अल्लाह कोई करम कर दे, यहाँ तो मामला सुबह फ्लाइट पे यार। वहां क्या हुआ कि जो पानी को मीठा करने वाला प्लांट था उसमें खराबी हो गई, इंजीनियरों को बुलाया गया, किसी से सही नहीं हुआ। तो जो अफसर था उसने कहा वो राशिद कहाँ? अब ये क्योंकि एजेंट थे तो इनको चाचा राशिद कहते थे, उसने कहा चाचा राशिद कहाँ है? कहा सर वो उसकी तो जॉब खत्म हो गई, उसका हिसाब हो गया। अरे जॉब खत्म हो गई? हाँ खत्म हो गई, हिसाब किताब हो गया, वो तो पाकिस्तान चला भी गया। अरे ऐसे काम का आदमी, उसको बुलाओ। किसी ने कहा कल सुबह की फ्लाइट है, कहा उसका अभी जाओ लेकर आओ। फौरन आदमी गया, जाके दरवाजे पे दस्तक दी, ये सजदे में सर रखे हुए रो रहे थे, जाके दरवाजा खोला, कहा तुम्हें अभी इसी वक्त बुलाया है, प्लांट में कोई खराबी हो गई। इन्होंने कहा मेरी तो फ्लाइट है सुबह की। अरे सुबह की फ्लाइट है, तुम अभी तो चलो। अच्छा तुम चलो, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। कपड़े बदल के फौरन पहुंचे, उन्होंने कहा चाचा राशिद इस प्लांट पर बड़े बड़े माहिर इंजीनियर हमने बुलाए, कोई इसको सही नहीं कर सका, लेकिन तुम तजर्बेकार हो, उम्मीद है तुम कर लोगे। क्या तुम सही कर सकते हो? कहा मैं कर लूंगा, लेकिन 1 मिनट या 2 मिनट के लिए कमरा बिल्कुल खाली छोड़ दे, तन्हा मैं अकेला इसमें रहूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, पता नहीं क्या करें। तो हजरत ने उनको ये बताया था, क्योंकि सूरह मुजम्मिल शरीफ भी वो पढ़ते थे, फरमाया था जब कोई ऐसा मसला हो बिल्कुल तन्हाई में सूरह मुजम्मिल पढ़ना, इंकशाफ हो जाएगा कहां पर फॉल्ट है। उन्होंने कहा ठीक, सबको बाहर निकाल कर सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़ना शुरू की। पीर और मुर्शिद अशरफुल मशाइख की तरफ तवज्जो की, हुजूर करम फरमाइए। फौरन ज़हन में आ गया कहां फॉल्ट, फौरन सबको बुला लिया। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा बस जो मैं कहता हूं करते रहो। 2-3 आदमियों को अपने साथ मिलाया, कई जगह से खुदाई कराई, वो नीचे से पाइपलाइन गुजर रही थी उसमें फॉल्ट था, वहीं से पता चला, इन्होंने वहीं ट्यूब वगैरह लगाई, जो कुछ करना था वो किया, और उसके बाद प्लांट को घुमाया, वो चल पड़ा। जब चल पड़ा तो चाचा राशिद जिंदाबाद के नारे लग गए, बड़े खुश। अफसर ने बुलाया, कहा हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। कहा इनाम किस बात का? मैं तो सुबह जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? कहा वो जो मेरा अफसर था जो आपसे छोटे हैं, वो ये बड़ा अफसर, उसने तो मेरा हिसाब कर दिया। कहाँ है तुम्हारी फाइल? मगाओ। फाइल मगाई, उसने लिख दिया जब तक ये आदमी खुद नौकरी नहीं छोड़ेगा नौकरी नहीं खत्म हो, जब तक ये नहीं छोड़ेगा नौकरी खत्म नहीं हो। ये है अल्लाह के वली की जबान, वलिसानहु अल्लज़ी यतकल्लमु बिही। अल्लाह फरमाता है मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, उनकी जबान पे हक बोलता है। इंतजामिया को हुक्म दे दिया जाता है हमारा हुक्म इसकी जबान से सुनो, वली की जबान से निकल गया था, उसने लिख दिया, फ्लाइट कैंसिल हो गई। उसके बाद मजीद 10 साल रहे, सारे काम किए, और उसके बाद जब कमजोर हो गए और दरखास्त दी कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं, उन्होंने कहा नहीं, हम आपको छोड़ना नहीं चाहते। फरमाते मेरे कानों में अल्फाज आए, तुम नौकरी को छोड़ोगे, नौकरी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। यह है अल्लाह के वली की शान। तो उनकी उनकी कैफियत यह थी कि जो जबान से निकल गया वो हो गया, लेकिन ये कैसे हुआ? अपने मामूलात पर इस्तेकामत। पंजाब के दौरे में सख्त सर्दी में उठकर ठंडे पानी से वजू करना, यानी पानी में हाथ डालो तो ऐसा लगता है कि हाथ शल हो गए, ठंडे पानी से वजू करके मुसल्ले पे खड़े हो जाते। तो जहां ठहरे थे उन्होंने कहा, हजरत आप ठंडे पानी से क्यों वजू करते हैं, हमने तो गीजर लगाए हुए हैं। और आप जानते हैं कि गीजर अगर दूर लगा हो तो गर्म पानी आने में देर लगती है ना, थोड़ी देर के लिए आप नल खोल दें, फिर ठंडा पानी आएगा काफी देर, 5 मिनट 10 मिनट, फिर कहीं जाके गर्म पानी आएगा। और अगर गीजर वॉशरूम के करीब हो तो उसी वक्त आ जाए। तो जिस कमरे में हजरत कयाम फरमा थे, गीजर उससे काफी दूर था, आप उठते थे फौरन वजू करके और आके मुसल्ले पे खड़े हो जाते। तो जब सुबह जिक्र हुआ तो जो साहिबे खाना थे उन्होंने कहा, हजरत आप ऐसा करें, जाने के बाद 10 मिनट तक नल खोल दें, 10 मिनट तक पानी बह जाएगा, ठंडा पानी चला जाएगा, गर्म पानी आ जाएगा, आप गर्म पानी से वजू कर। अब सुनो अल्लाह के वली का जवाब, हम कितनी चीजें जाया कर देते हैं, कितना पानी जाया कर देते हैं, कितनी नेमतें अल्लाह की जाया कर देते हैं, कभी एहसास नहीं होता कि कयामत में हमसे पूछा जाएगा। जब साहिब खाना ने कहा कि आप 10 मिनट तक नल खोल दें, ठंडा पानी निकल जाएगा, फिर गर्म पानी आ जाएगा, हजरत ने फरमाया वो जो पानी जाया होगा उसका हिसाब कयामत में मुझसे लिया जाएगा, वो जो पानी जाया होगा उसका हिसाब मुझसे लिया जाएगा। तो मैं क्या जवाब दूंगा, जितनी देर में तुम्हारा गर्म पानी आता है उतनी देर में मेरा वजू हो जाता है, अब तो मुझे आदत है मैं खड़ा हो जाता। है कोई इंसान ऐसा कि जो इस तरह करे? हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में ऐसे बेशुमार वाकयात कि जिससे ये पता चलता है कि आप अपने मामूलात पर इस्तेकामत के साथ अमल करते थे, और न सिर्फ खुद अमल किया अपने मुरीदों को भी अमल करा। आपके मुरीदीन मुतकिदीन में कितने लोग जिन्होंने दुआए हिफ्ज़ुल बहर, अल्लाहु समद, दलाइलुल खैरात, कसीदे गौसिया, दुआए हैदरी, दुआए सैफी, इन तमाम चीजों के आमिल बने, किसकी वजह से? एक मर्द कलंदर की निगाह करम की वजह से। लेकिन ये उन्हीं की निगाहें करम थी, हमें ये ताकत नहीं कि हम पढ़ सके। आज जो भी जो कुछ पढ़ रहा है उन्हीं की निगाहें करम से पढ़ रहा। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी तस्बीह हाथ में नहीं ली, हजरत ने उनको 24 घंटे विर्द का बता दिया, 24 घंटे तस्बीह हाथ में पढ़ रहे, ये किसकी निगाहें करम? ये हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह की निगाहें करम। इसीलिए उनकी उनके चेहरे पर नूर था, इबादत का नूर था, तकवे का नूर था, परहेजगारी का नूर था, दुआए हिज्जुल बहर का नूर था, दलाइलुल खैरात का नूर था, सूरह मुजम्मिल का नूर था, शब्बे दारी का नूर था, जिसने देखा वही कुर्बान। आपके मुताल्लिक हमने आपके तेहलुम के मौके पर हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह का हुलिया, उनके मामूलात, उनका किरदार, उनकी गुफ्तार और उनका विसार, ये तमाम चीजें हमने चंद अल्फाज में बयान की थी। ये अशार तो नहीं है, लेकिन अल्फाज को जोड़कर एक मोतियों का एक गुलदस्ता बनाया गया। तो मुझसे कुछ लोगों ने ये दरख्वास्त की थी कि हजरत के चेलुम पर जो आपने हजरत का हुलिया जो इसमें बयान किया था और वो महनामा अशरफ में भी छपा और किताबों में भी, तो उनका इसको दोबारा यहाँ पर बयान कर दे। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हजरत की शख्सियत क्या थी। हजरत अशरफुल मशाइख अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नफरताहु मरकदहु का हुलिया क्या था? जिन लोगों ने देखा वो तसव्वुर में आपका चेहरे अनवर रखे, कुशादा पेशानी मतलए अनवा, आंखें रोशन चमकदार, खुदा की याद में शब्बेदार, अबरू खमदार, उभरे हुए मुस्कुराते रुखसार, जिन पर हम वक्त बरसते अनवार, गंदमी रंग में सुर्खी के आसार, दाढ़ी घनी फैली हुई बावकार और वो भी सफेद चमकदार, शाने चौड़े मर्दाना वार, नाक सतवा कदमियाना, जिस्म घना एक शजर सायादार, पुरसुकून जैसे दामने कोसार। हजरत का लिबास, लिबास में सादगी के आसार, नीला तहबंद सफेद कुर्ता चमकदार, सर पर सफेद टोपी जिसमें नालैन के नक्शो निगार, खास महाफिल में जलसों में सर पर अशरफी दस्तार, तन पर जुब्बा कामदार, हाथ में असा शानदार, बा अजमत बा वकार, शहजादा अहमद मुख्तार, असलाफ की यादगार। अब आइए हजरत के मामूलात जो मैंने अभी आपको बताए, रात में 100 नफिल, सूरह मुजम्मिल 22 बार, सूरह इखलास इस तरह, ये सारी चीजें, हर शब नवाफिल 100 बार, आखिरी शब में जिक्र अज़कार यानी अल्लाह की तकरार, बाद फजर सूरह मुजम्मिल 100 बार, और दिन में मखलूक की खिदमत के लिए तैयार, बाद असर दुआएं हिज्जुल बहर 22 बार, और बादशाह अशरफी दरबार गौहर बार, जिसमें हाजिर हो मरीज बेकरार, जब पड़े आपकी निगाहें पर अनवार, उसको आ जाए करार, और अगर जिन हो तो हो जाए फरार, अगर जिन हो तो हो जाए फरार, हर लहजा तकल्लुफात से बेजार, सोने के लिए पलंग या मसैरी से इनकार, ऊपर नहीं लेटते अपने मुसल्ले पर ही सो जाते, जमीन पर मुसल्ला बिछाए, जहां पढ़ते थे वहीं तकिया लेकर आप लेट जाते, तकल्लुफात से बेजार, सोने के लिए पलंग या मसैरी से इनकार, सिर्फ मुसल्ले ही पर नींद फिर बेदार, इबादत के लिए हम वक्त तैयार, इस्तेकामत का कोहसार, सेहत और बीमारी में मामूलात के लिए तैयार, आप इतने शब जिंदादार, यही थे उनके लैलो नहार। अब आपकी शान हजरत अशरफ मशाइख की शान, मैदान तरीकत का शहसवार, शरीयत पर इस्तेकामत के साथ करार, अहले तरीकत के लिए सरमाया इफ्तिखार, अहले दिल के लिए सुकून व करार, इश्क नबी से सरशार, गुलाम अहमद मुख्तार, बावकार बाकिरदार, पूरी दुनिया में उनके जानिसार, उनकी महफिल बेसुकून दिलों का करार, गुफ्तगू ऐसी कि हर शख्स उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार, काफ़िला इश्क मोहब्बत का सालार, बेदीनों से बरसरे पैकार, तासुब और नफरतों के खिलाफ खुली हुई तलवार, इत्तेहादे मिल्लत का अलम बरदार। ये हजरत की शान और हजरत का विसाल, 17 दिसंबर शब को हुआ विसाले परवरदिगार, होंठ हिलते थे हजरत के बार बार, जबां पर जारी था कलमए हबीब किरदिगार, हुई हर आंख अश्कबार, पूरी दुनिया में उनके जानिसार, सब हुए बेकरार, जनाजे में थे उलमाए ज़ीवकार, मशाइख किबार और मखलूक खुदा बेशुमार, थी वसीयत के बने मेरा मजार, पहलू में वालिदे बुजुर्गवार, ताके रहूं ता कयामत उनके कुर्ब जवार, चुनाचे बना आपका मजार, कुर्ब वालिदे बुजुर्गवार, कबर में तबर्रुकात मुस्तफ़ावी की बहार, कबर में आए हबीबे किरदिगार, कबर हुई पुर अनवार, हकीकत में जन्नत का बागो बहार, खुदा करे के बरसे उस पर ता कयामत रहमत व अनवार। ये हजरत के मुतालिक इस फकीर ने हकीर सा नजराना पेश किया, अगर वो कबूल कर लें तो उनकी मेहरबानी, अगर कबूल कर लें तो उनकी मेहरबानी। अब गौर करो हमारा अमल क्या है और उनका अमल क्या था, हम ना नमाजें पूरी पढ़े, ना वज़ाइफ़ पूरे पढ़े, ना मामूलात पूरे हों, वो शख्स जो रोजाना 100 नफिल पाबंदी से पढ़ता हो, रोजाना रात में 1000 दफा सूरह इखलास पढ़ता हो, रोजाना जिक्र अज़कार करता हो, रोजाना सूरह मुजम्मिल फजर के बाद 100 मरतबा पढ़ता हो, रोजाना असर के बाद दुआएं हिज्र बहर 22 बार पढ़ता हो, इतने अजीम मकाम पर फाइज होने के बाद खशियत इलाही ये थी, वसीयत फरमाई के मेरी कब्र में खातून जन्नत फातिमा तो जहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोजे की मट्टी मेरे सीने पर मल देना, इसकी वजह से मेरी बख्शिश हो जाए। मैं गुनाहगार हूँ। मस्जिद नबवी के फर्श का एक टुकड़ा फरमाया ये कब्र में रख देना, इसकी वजह से मेरी बख्शीश हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक की खाक जो खाके शिफा कहलाती है, कहा ये मेरी कब्र में रख देना, इसकी वजह से मेरी बख्शीश हो जाए। जो आदमी तरीकत के इस मकाम पर फाइद हो और उसके बाद उसकी ये कैफियत हो तो हम और आप किस गिनती में, हमारे और आपके क्या अमान। लेकिन एक उम्मीद है, एक उम्मीद है कि उनके दामन से वाबस्ता हैं इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। इस फकीर ने उलमा और मशाइख की सोबत उठाई, उनसे कस्बे इल्म किया, कस्बे फैज किया, अपने खानदान के उलमा और मशाइख और दीगर उलमा अहले सुन्नत मशाइख अहले सुन्नत की सोबत उठाई। लेकिन मैं बबांगे दोहन ये कहता हूँ कि जैसा अपने वालिद मोहतरम को देखा ऐसा किसी को नहीं, जो शख्सियत उनकी थी वो किसी की नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला उनके मरकद मुबारक पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए और उनकी नालंग से लगे हुए जर्रों के सदके में हम सब के गुनाहों को माफ़ करें। हर शख्स को अपने पीर से मोहब्बत होती है और होनी भी चाहिए। अकीदत मोहब्बत का तकाजा यही है कि जिसके हाथ पे बैत करे, बैत के माना बेच देना, अपने आप को बेच दिया। इसीलिए किसी बुजुर्ग का कौल है मुरीद ला युरीद, मुरीद ला युरीद, मुरीद का इरादा ही नहीं है, अपने इरादे को पीर के इरादे में फना कर दिया, अपने इरादे को पीर के इरादे में फना कर दिया। यहां तो मुरीद कहते नहीं, पीर हमारे इरादे पे चले, जो हम कहें वो चले। कोई तो हाथ चूमने आता है तो आगे बढ़ता है, कोई हमारे हाथ खींच लेते, हर किस्म के हैं। कोई कहता है जो आपका हुक्म हो वो, कोई कहता नहीं मेरी मर्जी ये है आप इस पर चले। हालांकि होने चाहिए मुरीद ला युरीद, मुरीद का इरादा ही नहीं, अपनी मर्जी को अपनी मंशा को पीर की मंशा में मर्जी में इरादे में फना कर दिया। आजकल असल में बस काफी हो चुका है, मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन चंद जरूरी बातें जो आपके सामने बयान कर दूं। हर शख्स को अपने पीर से अकीदत मोहब्बत होती है, होनी चाहिए, लेकिन जो चीज तरीकत के खिलाफ है वो खिलाफ है और हमारा फर्ज है कि हम उस पर आवाज उठाएं और बताएं कि ये चीज गलत हो रही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक, सरकार की दाढ़ी शरीफ का जो बाल है उसे हम क्या कहते हैं, मुंह मुबारक, और उसका किसी घर में होना बाई से बरकत रहमत सवाब सआदत, अल्लाह की रहमत नाजिल हो। एक साहब ने अपने पीर की दाढ़ी का बाल उसको मुंह मुबारक कहकर तकसीम किया। नाम लेना नहीं चाहता, आप समझदार हैं, आप जानते हैं, बहुत से क्लिप भी चले, लेकिन ये तरीकत के खिलाफ। मुंह मुबारक सिर्फ और सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम का और किसी का नहीं, किसी का नहीं, मंसूबी इसीलिए है। और ये कहां गए कि इन साहब ने फला सवाल का जवाब दिया, लिहाजा ये मुंह मुबारक जिनका था उनका नाम लेकर उनका मुंह मुबारक दिया जा रहा है। हम बड़े अदब से ये कहते हैं खुदारा ऐसा ना कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम से किसी को ना मिला, कोई कितना ही मुत्तकी हो सरकार की नालायन के खाक के बराबर भी नहीं। मुंह मुबारक अगर है तो सिर्फ और सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम का। आपके बाद अगर अपने पीर की दाढ़ी शरीफ का बाल है इज्जत तो इत्तेराम के साथ रखिए, लेकिन जियारत ना कराइए, वसीयत कर दीजिए मैं मर जाऊं तो मेरे सीने पर रख देना। ये सही अकीदत है, मोहब्बत है, पीर का दाढ़ी का बाल कब्र में चला जाए अल्लाह इसकी वजह से मेरी बख्शीश कर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी हमारे पीर की दाढ़ी शरीफ के बाल, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। इंशाल्लाह वसीयत यही होगी कब्र में जाएंगे ताकि उसी की वजह से बख्शीश हो जाए। तो इसलिए तरीकत में ये चीज जो है ये गलत है, किसी ने भी अगर किया है तो गलत किया है। मुंह मुबारक सिर्फ और सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम के हैं और उन्हीं के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप वो तकसीम कर रहे हैं अपने पीर भाइयों में तो कीजिए, लेकिन उसे मुंह मुबारक ना कहें, इसलिए कि वो सिर्फ और सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम। हमारे मशाइख तरीकत ने ये बताया, किसी को किसी बुजुर्ग की जियारत हो, किसी को नबी पाक अलैहिस्सलाम की जियारत हो, ये रात है, यहाँ तो हर किसी को ज्यारत हो रही। वो कहता मुझे गौस पाक की ज्यारत हो गई, वो कहता मुझे सरकार की ज्यारत हो गई। अरे गुनाहों में लिथड़े हुए हैं, नमाजों की पता नहीं है, धोखा दही में लगे हुए हैं, सारे करतूत जारी हैं और ज्यारतें गौस पाक की हो रही, ज्यारतें नबी पाक अलैहिस्सलाम की हो रही। वो लोग जो मुत्तकी परहेज़गार थे, जिनको हर रोज सरकार की ज्यारत होती थी, उन्होंने भी कभी चर्चा नहीं किया कि हमें ये इजाज़त मिली। तरीकत तरीकत ये बताती है ये सब राज है। जो राज को फाश कर दे उसको राज नहीं बताया जाता, और जो राज को राज रखे उसे मजीद राज बताया जाता। हमारे मशाई के तरीकत ने ये बताया, अगर तुम्हें कुछ कभी कोई इंकशाफ हो, कभी कोई बात मालूम हो, कभी जियारत हो, सिवाय अपने शेख के किसी को ना बताओ, सिर्फ अपने पीर को बताओ। हजरत अशरफुल मशाइक रहमतुल्लाह अलैह ने चिल्ला कशी के दौरान रोजाना एक बुजुर्ग की जियारत की, रोजाना। सिर्फ अल्लाह उस समत के 70 चिल्ले किए, 70 दिनों में 70 बुजुर्गों की जियारत। और आ फरमाते थे कि मेरे शजरे में जितने बुजुर्गाने दीन हैं, यानी हजरत कुतुब रब्बानी से लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम तक, हजरत फरमाते थे मैंने सबकी जियारत की। है कोई आज ऐसा पीर जिसने अपने शजरे के सारे बुजुर्गों की जियारत की हो? मेरा पीर ऐसा था, उनकी शान ये थी, लेकिन कभी जबान पर नहीं लाए। फरमाया ये राज इसको बताना नहीं है। जब किसी मकाम पर बिठाया जाता है तो हुक्म होता है आंखें खुली रखो, जबान को बंद कर दो, जो कुछ हम दिखाएं वो देखते रहो, मगर वो जलवा जो पिछले पहर हम दिखाएं किसी को बताया तो अच्छा ना हो, वो नगमा जो पिछले पहर हम सुनाएं किसी को सुनाएं तो अच्छा ना होगा। हमारी अता की हुई बेखुदी से अगर होश आया तो अच्छा ना होगा। कहीं भी रहे, किसी हाल में रहे, हमें घर भुलाया तो अच्छा ना होगा। कभी भूल कर गैर के नक्शे पा को जिबी से लगाया तो अच्छा ना होगा। हो कुछ भी मगर जो कदम उठ गया है वो पीछे हटाया तो अच्छा ना होगा। और ये कहकर उन्होंने मुझे राज सौंपा, ये कहकर उन्होंने मुझे राज सौंपा, किसी को बताया तो अच्छा ना हो, किसी को बताया तो अच्छा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह की यही तालीमात थी। वो इल्म और फजल, तकवा और परहेजगारी, तहारत और पाकीजगी का मरकज थे, मंबा थे, और जिस मकाम पर थे कभी भी अपने मकाम को जाहिर नहीं किया, और अगर कोई करामत जाहिर हुई उसे बताने का हुक्म नहीं दिया। फरमाया इसी को यहीं पर रखो, अगर बताना हो मेरे विसाल के बाद बता। आज तो किसी को जरा सा इंकशाफ हो जाए तो वो कहते हैं कि मैं तो पता नहीं क्या बन गया, किसी को वजीफा बता दो, और जब वो आकर कभी आए उससे पूछो, कहते हैं हाँ जी हजरत रूहानियत आ गई, काफी काफी रूहानियत आ गई मेरे अंदर। मैंने कहा हम बताएंगे या तू बताएगा? वो बता रहा है कि हमारे अंदर रूहानियत आ गई। और उनको देखो जो रूहानियत का मरकज और मंबा थे, छुपाते रहे अपने आप को, हम कुछ नहीं हैं, इन्होंने कहा कुछ नहीं, खुदा ने सब कुछ बना दिया। आज ये लैलो नहार जो नजर आ रहा है, ये रौनक नजर आ रही है, ये चमकती हुई लाइटें, ये दरगाह की रौनक, ये यहाँ पर मजमा, ये सब मेरे वारिसे गिरामी की अनथक मेहनत और कोशिशों का नतीजा है। जिस वक्त हजरत कुतुब रब्बानी ने विसाल फरमाया 1961 में, यहाँ पर ना लाइट थी, ना गैस थी, ना पानी था, कोई चीज नहीं थी। एक अल्लाह का वली दरख्त के नीचे जाय नमाज बिछा कर बैठा था, यहाँ कोई भी नहीं था, जंगल था। बस समझो एक वली जमीन में था, एक वली जमीन पर, और जो जमीन में था वो जमीन पर बैठे हुए वली को फैज पहुंचा रहा था, और जो जमीन पर था वो आगे मखलूक में फैज पहुंचा रहा था। आज 50 साल से ज्यादा अरसा हो चुका, ये सारी रौनक नजर आ रही है। जितने लोग यहाँ आएंगे फैज पाएंगे, जितने लोग बधाई पढ़ेंगे, जितने लोग दुआएं इस बहर का चिल्ला करेंगे, जितने लोग इस दरगाह से हिदायत हासिल करेंगे, उन सब का सवाब अशरफुल मशाइख की रूह मुबारक को पहुंचे। उनकी मेहनत, उनकी कोशिश, अल्लाह तबारक व तआला उनके मरकज मुबारक पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आपको पता है कि दो मुरीदीन को जो निशान अशरफ दिया गया, उनमें एक अब्दुल करीम अशरफी साहब थे, तो जब इनको वो निशान अशरफ दिया जा रहा था तो मुझे एक वाकया याद आया। इनके बड़े भाई हाजी मोहम्मद हुसैन मरहूम, उन्होंने बताया कि ये अब्दुल करीम अशरफी साहब जब बिल्कुल छोटे थे, बहुत कम सिन थे, तो ये कहीं गायब हो गए। खुद तो गायब नहीं होंगे, जाहिर है बच्चा तो कहीं भी चला जाता। सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं हुआ। तो हाजी मोहम्मद हुसैन फरमाते हैं कि मेरी वालदा ऐसी हो गई जैसे मरने के करीब, मेरा बच्चा कहाँ है कहाँ है, ढूंढते ढूंढते। किसी ने बताया कि दरगाह अशरफिया जाओ, वहां एक बुजुर्ग हैं, वो दुआ कर देंगे, तुम्हारा बच्चा वापस आ जाए। हजरत के पास आए, आपने ताबीज भी दिया, दुआ भी की, अब्दुल करीम अशरफी साहब वापस आ गए। इनके वापस आने के बाद खत्री बिरादरी के कसीर तादाद में अफराद हजरत के हाथ पर बैत हो गए। फिर ये सिलसिला चलता रहा, फैज जारी रहा। आज न्यू कराची 11G में और पीर कॉलोनी में जितने भी खत्री बिरादरी के अफराद है, तकरीबन जितने भी हैं, वो सब हजरत के मुरीद। अब्दुल करीम अशरफी साहब आपके सामने खड़े हैं और ये हजरत के बहुत लाडले मुरीद थे, इसी वजह से इनको ये दिया गया। तो ये वाकया एक मेरे जहन में था, मैंने बता दिया। हमने इस मौके पर ये किताब हजरत की वाकयात जो मैंने चंद बयान किए हैं, हजरत ने अपनी जिंदगी में 17 हज अदा फरमाई, 17 और उम्रे बेशुमार की, और इन 17 हजों में नबी पाक अलैहिस्सलाम की जियारत भी हुई, दीगर बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन की ज्यारतें हुई, लेकिन हजरत ने अपनी जिंदगी में कभी उसका इजहार आम तौर पर नहीं किया। कुछ हमें बताया या किसी को बताया तो हमें पता चल गया, आम लोगों को नहीं पता। वो सारे वाकयात हमने इसमें जमा कर दी। इसमें 3 अबवाब हैं, हजरत मुर्शिद कामिल, हजरत के सफर के वाकयात, हज के वाकयात, हजरत की इबादत और रियाजत। ये किताब मेरे फर्जंद सानी साहबजादा सैयद ज़ुल्क़रनैन अशरफ जिलानी ने मुझसे कहा कि इसको हजरत की सालाना फातिहा पर छपवाया जाए ईद के बाद। तो मैंने ये कहा कि मुझे हॉलैंड जाना है, इसमें मुश्किल हो। इन्होंने कहा नहीं, आप वाकयात टेप करा दें, हम कंपोजिंग करा दें। कुछ वाकयात मैंने टेप करा दिए, कुछ वाकयात वैसे मौजूद थे, कुछ वाकयात बिरादर असगर साहबजादा हकीम सैयद अशरफ जिलानी दामत बरकातुल आलिया ने बताए, और इन्होंने दिन रात मेहनत करके इसकी कंपोजिंग कराई। और इस सिलसिले में हमारे अजवाद अत्तारी साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत से इस किताब की कंपोजिंग की। ये किताब आप तमाम हजरात मर्द और ख्वातीन जो जो भी मेरी तकरीर सुन रहे हैं, इस किताब को स्टॉल से जरूर हासिल करें, इसको बड़े गौर से पढ़ें, और आपको पता होगा कि जिसके हाथ पर आप बैठ हैं या जो आपके दादा पीर हैं, उनका मकाम क्या था, कितनी अजीम शख्सियत थे, और आज भी वो इसी तरह लोगों की दस्तगीरी कर रहे हैं। और फिर किताब तैयार हो गई, लेकिन इसको छपवाने में जनाब ताहिर अशरफी साहब, इब्राहिम अशरफी साहब, इन दोनों भाइयों ने बड़ी मेहनत की, और वक्त कम था, लेकिन आज ही असर के वक्त ये किताब छपकर हमारे हाथ में आ गई। जिन जिन लोगों ने इसमें मेहनत की, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, और उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको हजरत अशरफ मशाइख के फैजान से मुस्तफीद फरमाए। हमारे हल्का अशरफिया के एक बहुत अहम रुकन जनाब साबिर अशरफी साहब, जो जिनके हाथ में लंगर का इंतजाम रहता है, और वो बड़ी पाबंदी से ये इंतजाम अंजाम देते हैं, उनकी पूरी टीम है। अब आप देखेंगे अभी इसके बाद जो लंगर होगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल सुबह हज पर तशरीफ ले जा रहे हैं, इसीलिए उनको हमने इजाजत दे दी और वो इजाजत लेकर यहाँ से चले गए। उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बखैर और आफियत उनको वापस लाए, और अपने पीर के सदके में अल्लाह ताला उनका हज भी कबूल फरमाए। हमारे नुमान अशरफी साहब अपनी आईटी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद रहे और इस प्रोग्राम को लाइव उन्होंने चलाया। इनके लिए, इनकी पूरी टीम के लिए, बिलाल अशरफी और दीगर हजरात जो हैं, उन सब के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन सब को हजरत अशरफ मशाइख के फैजान से मुस्तफी फरमाए। वो हजरात जो पार्किंग में हैं और आप हजरात के गाड़ियों और बाइकों की हिफाजत कर रहे हैं, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। हमारे स्टेज पर अल्लामा ज़हूर अहमद कादरी अशरफी साहब, जनाब रियाज अली अशरफी साहब, मुफ्ती अब्दुल समद साहब अशरफी जो चले गए, मुफ्ती शरीफ सईदी साहब, जितने भी हजरात यहाँ पर आए, मैं उन सब की आमद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और हमारी महफिल को रौनक बख्शी। आखिरी बात, हजरत अशरफुल मशाइख का पैगाम शरीयत और तरीकत पर इस्तेकामत के साथ अमल, शरीयत और तरीकत पर इस्तेकामत के साथ अमल, नमाजों की पाबंदी, अपने मामूलात की पाबंदी, حقوق اللہ حقوق العباد کی پابندی، یہی ان کا عمل تھا، یہی ان کا قول تھا، یہی ان کا فرمان تھا، یہی ان کی ہدایت تھی۔ جب تک ہم ان کی ہدایت پر چلتے رہیں گے انشاءاللہ کامیاب رہیں۔ آپ کہیں بھی ہوں، کسی مقام پر بھی ہوں، یقین کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کو پکاریے، انشاءاللہ ان کی مدد ضرور شامل حال ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امن کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیر و مرشد اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔